Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Vibhuti Mishra.
Dhanyavaad Lalima. Namaskar Shrotaon, Market Mantra mein aapka swagat hai. Market Mantra mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par ek nazar dalenge aur saath hi is par charcha bhi karenge. Aarthik khabron par charcha ke liye aaj hamare saath studio mein maujood hain aarthik vishleshak Kumar Bijoy. Kumar Bijoy, Market Mantra mein aapka swagat hai.
Dhanyavaad Bihuti ji, dhanyavaad Lalima ji.
Welcome. और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी लालिमा अनेजा डेंग.
थैंक यू विभूति जी. यस, द हेडलाइंस फर्स्ट फ्रेंड्स. डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस एंड इन ग्रीन. सेंसेक्स क्लोजेस एट 76,607. निफ्टी सेटल्स एट 23,323. इंडिया टू रिमेन वर्ल्ड्स fastest growing economy with steady growth rate of 6.7% over the next three fiscal years, says World Bank. And Brent crude trading at $82.81 per barrel in global crude market.
प्रमुख घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद. सेंसेक्स 76,607 और निफ्टी 23,323 पर बंद. विश्व बैंक ने कहा है कि भारत अगले तीन वित्तीय वर्षों में 6.7% की स्थिर विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $82.81 प्रति बैरल. और सबसे पहले शेयर बाजार की खबर. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 150 अंक या 0.2% बढ़कर 76,607 पर बंद हुआ. निफ्टी 58 अंक या 0.25% बढ़कर 23,323 पर बंद हुआ. एनएससी निफ्टी में 168 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ जबकि 10 ने अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर को छुआ. बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक 1% से ऊपर मुनाफे में रहे. सेंसेक्स सूचकांक में 30 में से 19 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज की गई है और विस्तार बता रही हैं हमारी सहयोगी लालिमा.
जी धन्यवाद. इंडियाज इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस एंडेड इन ग्रीन टुडे. द सेंसेक्स रोज 150 पॉइंट्स और 0.2% टू क्लोज एट 76,607. निफ्टी गेन्ड 58 पॉइंट्स और 0.25% टू सेटल एट 23,323. इन द एनएससी निफ्टी 168 कंपनीज हिट देयर 52 वीक हाई. 10 हिट देयर 52 वीक लो. In the broader market at the BSE, the mid-cap and small-cap indices rose above 1%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies registered gains. The top three gainers today were Power Grid 2.54%, Tech Mahindra 1.56% and Bajaj Finance 1.18%. Conversely, the three major laggards were Mahindra & Mahindra 1.34%, Hindustan Unilever 1.03% and Infosys 0.71%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors logged gains, while two witnessed losses and auto sector ended flat. The top three gainers were industrials 1.22%, Power 1.2% and capital goods 1.19%, whereas FMCG 0.4% and Realty 0.11% were the only two laggards. The overall market breadth was positive. Out of 3,991 companies, shares of 2,554 companies advanced, 1,336 declined and 101 remained unchanged. So, Bijoyji, that's you know, markets stumbled on the day of the election results, but now that they have recovered so well at 76,000 plus, it's a good sign, and the buzzword is continuity in the government. We saw that the ministers got the same portfolios, especially of the important ministries, and that has sent a lot of confidence amongst the markets, and markets are always sensitive to all these things.
Very correct, madam. It's basically, see, the moment when there was a exit, it was euphoria.
Yes.
And followed by there was a confusion when the counting actually started. See, there is a very important parameter called political risk. And when political risk is there, who is there in governance is not important. Important is that whatever the norms and policy frame is there is going to continue or not.
Right.
Because you will not have the time for wait and watch. So that's why it's a global investor. They were really monitoring and they were waiting that what is going to be result. The moment final decision was there that government is going to continue, and very interestingly, same minister, same team is going to work, it gives a big message. And now in this artificial intelligence era, 5 years is a really very big period. It is equivalent to something 3-5 years, that is 15 years in past before AI era. So it is that way you can expect political risk has improved to a greater extent. And not only that, you will find that now onward, even other global institutions, investment bankers and others will start giving you a better predictions, better forecast related to coming period, because they know that the foundation is going to give that kind of result.
You mentioned a very important five-year period, quote-unquote. In the last 5 years, prime ministers or presidents of many countries have changed, important countries have changed, but we have remained stable for the last 10 years. Also, this year is a very peculiar year because about 40 countries will have elections and they will have their heads, whatever the outcome would be. Interestingly, some countries have already had elections, and we know, as we know, Italy, in Italy, Meloni has come back. What is the effect of these elections which has happened in EU and some countries at the moment on, does it have any impact on our country's economy? Because the ideology changes, like it's, as they say, right in Italy right now.
See, three things are there. First, India has to be within India. That's India itself is a big one. I always, whenever it is an economic term, I always treat it as a continent. Second, India in Asia Pacific. We have to first look into what is the position change, power change is going to take place, and who is going to emerge in Asia-Pacific. And to be little more on a bigger and wider way in the Asia-Pacific is emerging market.
Mm-hmm.
We'll find out even MSCI has given a higher weightage to the now India. Our weight from 18.4, it has moved to 19. And finally, we are slowly going to be closer to China's weight. So that is one. And then third level is the global economy, undoubtedly.
Yeah.
If you look European Union, European economy at large, you'll find out very, you know, various sentiment is there. They are struggling, recessionary environment is there. So they will like to have someone who could be really their partner into the trade, into their economic component, where they can also improve. And that way, everyone is looking towards India. So that's why you have seen some, you know, few months back, World Bank has said India has not only to perform for self, it has to perform for global economy also. And that is what really we are waiting to happen.
Right, right.
Kumar Vijay ji, nayi sarkar ka gathan hua hai, Pradhan Mantri wahi hain, Vitt Mantri wahi hain. मार्केट ने बहुत अच्छे से रिकवर किया है, बिल्कुल बात सही है. सोमवार मंगलवार को थोड़ी सी हमने गिरावट देखी, आज फिर हम बढ़ते हैं. लेकिन हम आगे कुछ खबरों को बताएंगे. अभी जिस तरह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत की क्या स्थिति है, पूरी दुनिया मानती है, तो ऐसे में क्या कहीं ना कहीं से ये अनुमान था कि मार्केट और हाई जाता जितना गया नहीं, एक तो मेरा ये सवाल है. दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कोई ऐसा मंत्र बताइए हमारे श्रोताओं को जिसे थोड़ा सा मार्केट में उनको कभी खतरा ना हो जाए, वो किस फैक्टर पे ध्यान रखें. जी
देखिए, पहला ये है कि मार्केट और ऊपर जाता या नहीं जाता. देखिए, मार्केट अपने राइट पेस पे मूव किया है. अगर आप मार्केट के लॉन्ग टर्म मूवमेंट को देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट का है, और कंसोलिडेटेड वे में अगर मार्केट मूव करता है, करेक्शन के साथ मार्केट मूव करता है, तो उसमें फिर इनर स्ट्रेंथ होता है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ होता है। अगर स्पाइक है, रैली है, तो वो थोड़ा सा डैसी हो जाता है, और जितना फास्ट मूव करता है उतना फास्ट नीचे भी आता है। तो पहला तो ये है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है मार्केट का, क्योंकि गवर्नमेंट बंद हो गया, ठीक है, कंटिन्यूटी है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक बात जिस तरह से मैंडेट में जो थोड़ा सा पब्लिक का जो सेंटीमेंट उभर के सामने आया है, इंडियन, मुझे लग रहा है कि हमारे जो इंडियन सिटीजन हैं, वोटर हैं, वो रियली मैच्योर हैं, साइलेंट एंड मैच्योर वोटर हैं, जो उन्होंने थोड़ा सा जिस तरीके से मैसेज दिया है, ये गवर्नमेंट के लिए एक डू बेटर का इंस्ट्रक्शन है, और जो गलतियां गवर्नमेंट कुछ की हैं पीछे, या कह सकते हैं थोड़ा लैग रहा है, उस लैग को सुधारने का टाइम है। तीसरी बात एक और कहेंगे, जैसे 6.7 या आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशन है कि 7.2% के ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ेंगे, उससे भी जो हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है वो अचीव नहीं होने वाला है। उसको अचीव करने के लिए हमें कम से कम क्लोजर टू 10% का ग्रोथ रेट चाहिए, और अगर 10% का ग्रोथ रेट, 9 to 10% का ग्रोथ रेट नहीं मिलता है, तो हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो रिजल्ट कुल मिला के सम में ये कह सकते हैं कि जो सेम मिनिस्टर हैं, एक तरह से जैसे क्रिकेट के टर्म में कहते हैं ना, जीवन दान मिल गया आपको, तो जीवन दान मिला तो अब आप संभल के बैटिंग कीजिए, ताकि आप अपने सेंचुरी को या अपने टारगेट को अचीव कर पाइए। यही चीज इस गवर्नमेंट को देखना है। आपकी दूसरी बात जो थी, जब हम इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर की बात कहते हैं, स्पेकुलेटर को ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, इन्वेस्टर को थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है। और स्मार्टनेस ये है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी एनर्जी या जितना कह सकते हैं पोटेंशियल यूटिलाइज हुआ है, उससे कई गुना पोटेंशियल अभी अनटैप्ड है, अनयूटिलाइज्ड है, और अगर गवर्नमेंट उस पोटेंशियल को अनलीज करना शुरू कर दे, उसको यूटिलाइज करना शुरू करे, तो इतना बड़ा चेंज पॉसिबल है, जो मैं अभी पहले बता रहा था कि एशिया पैसिफिक में धीरे धीरे हमें एक लीडर की तरह उभर के आना है। और लीडर की तरह उभरने का मतलब ट्रेड से भी है, प्रोडक्टिविटी से भी है। जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसके बनाने का, जैसे रिजल्ट बनाने के लिए, टॉप करने के लिए हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा करने की जरूरत होती है, वही गवर्नमेंट को और प्रोडक्शन एनवायरमेंट को करने की जरूरत होगी। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत खास करके जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। उस एनवायरमेंट में कोई भी इन्वेस्टर अगर सेंसिबली इन्वेस्ट करके एक ठीक ठाक होल्डिंग पीरियड लेके चलता है, तो हर हाल में उसको गेन मिलेगा, वो निराश नहीं होगा।
जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। आप बारीक तरीके से आर्थिक खबरों पर नजर रखते हैं, जब सब कुछ बाजार में ठीक है, ऐसी कोई जो है कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे कि आज देखिए सुबह में बहुत अच्छे से शुरुआत हुई थी, लेकिन अचानक ऐसी बाजार जो है ठीक है, बाजार पे अनुमान करना मुश्किल काम है, अस्थिर है, स्वभाव भी उसका वही है, लेकिन ऐसी क्या शंकाएं या ऐसी क्या संभावनाएं सामने चली आती हैं कि कभी बहुत तेजी से घट जाता है, गिर जाता है, जबकि सब कुछ सामान्य दिखता है, ये जो संवेदनशीलता है वो कैसी है?
देखिए, अब जो बाजार है वो आपका बाजार किसी बिल्कुल आइसोलेटेड एनवायरमेंट में नहीं है। इस बाजार को दोनों फैक्टर, एक तो कंट्री के अंदर का फैक्टर और कंट्री के बाहर का फैक्टर जो ग्लोबल एनवायरमेंट है, ये दोनों फैक्टर इफेक्ट डालता है। और धीरे धीरे जब हम किसी दूसरे देशों से, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिकन हो, एशियन इकोनॉमी है, इनके साथ हमारा जो जुड़ाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसको हम कोरिलेशन कॉफिशियंट से मेजर करते हैं, और हमारा कोरिलेशन कॉफिशियंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक अच्छी बात भी है, हम ग्लोबल पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, लेकिन उसका असर भी तो होगा ना, उसका असर भी हो रहा है। तो भारत में दो चीजें बहुत अच्छी हैं अभी। एक तो हमारा जो कह सकते हैं कि रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो बहुत अच्छा है। दूसरा जो है प्रोडक्टिविटी, जो स्ट्रेंथ है, वो भी अच्छा है, हमारा प्रोडक्टिविटी स्ट्रेंथ भी अच्छा है। लेकिन जो एक तीसरा फैक्टर जिस पे थोड़ा सा खास करके मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स थोड़े कंसर्न शो किए हुए हैं, वो है इन्फ्लेशन, जो मुद्रा स्फीति है। अभी मतभेद हो सकता है, और मतभेद ये है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी व्यक्तिगत राय ये थी, मैं उम्मीद कर रहा था कि आरबीआई थोड़ा सा कम से कम 25 बेसिस पॉइंट कम करता ताकि एक इकोनॉमिक को मोमेंटम मिलता। ठीक है, इन्फ्लेशन बाद में होता, बढ़ाना घटाना आपके हाथ में है, लेकिन आप डर के अगर कम नहीं कर रहे हैं तो खैर एक 4:2 के रेशियो में सोच के अल्टीमेटली वो स्टेटस को मेंटेन किया गया है। मैं इसलिए कम चाह रहा था, थोड़ा कम होता उससे इकोनॉमी को बूस्टर मिलता। अभी देखिए शुरू के 100 दिन जो हैं वो एक हर मंत्री को अपना प्रूफ करना है, क्योंकि पक्की बात है 100 दिन के बाद रिपोर्टर भी पूछेंगे कि भाई आप 100 दिन का एजेंडा तो सुन रखा था कि आप इलेक्शन के रिजल्ट से पहले तैयार करके बैठे थे, तो किया क्या आपने, धरातल पे क्या उतरा, तो वो चाहेंगे करना। उसमें अगर मॉनेटरी सपोर्ट, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अगर ये मिलता तो अच्छा होता। ग्लोबल थोड़ा सा ग्लूमी, जो मैं बता रहा था यूरोपियन एनवायरमेंट कंप्लीट ग्लूमी है, थोड़ा चाइना है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, डिफ्लेशन से बाहर होने की कोशिश कर रहा है, ये सारे फैक्टर को अगर मिला के देखेंगे तो मार्केट है, अगर ये संभल के सतर्क होकर चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, तो आप इसको एक अच्छा संकेत और शुभ संकेत मानिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रुपये का हाल बताते हैं लालिमा जी, इसके बाद फिर आपकी वो वर्ल्ड बैंक की खास रिपोर्ट जो है वो श्रोताओं को बताएंगे। तो भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.55 रूपये पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.11% गिरकर 105.11 पर कारोबार कर रहा था।
All right, according to a recent World Bank report, India to remain the world's fastest growing economy with a steady growth rate of 6.7% over the next 3 fiscal years. This robust growth is fueled by strong domestic demand, a surge in investment and vigorous activity in the services sector. In its Global Economic Prospects report, the World Bank retained its growth forecast for India at 6.6% for financial year 2024-25. This projection underscores India's strong economic momentum driven by robust domestic demand, increased investment and vigorous services sector activity. On the other hand, International Monetary Fund, IMF, had earlier raised India's growth forecast for 2024-25 to 6.8% from 6.5% on the back of strong domestic demand and a rising working age population. Bijoyji, let's come back to another a corollary question to this report, that you said that the voter is mature now, and the last 10 years, the government has created a very firm foundation, economic foundation, which brings us to as the fastest growing economy and fifth largest economy of the world. GST in place, NPAs reduced, as you said, forex reserves unprecedented, MSMEs, PSUs doing very well now. Which are the areas in your view which still need to be streamlined, tightened and so on and so forth, which may give a further impetus to the economy?
See, two prominent areas. One is that, of course, unemployment challenge has to be resolved. This is a very big issue.
Mm-hmm.
And this issue, this is at a micro level, which is really required to be addressed. Mm-hmm. And second one is the micro and small units. I'm not talking medium units. I'm talking micro, small. Mm-hmm. If, of course, in a bigger way, you know, MSME could be considered. Mm-hmm. And I'm sure that now Jitin Manji Sahab has got this responsibility to make sure that this sector should perform. And very interestingly, he was mentioning in the media that when he was talking to Prime Minister, and Prime Minister said that in his priority, MSME is very core to his heart and that has to be addressed.
Yeah.
I'm sure, because when you are a small, you have a number of challenges.
Mm-hmm.
And you require hand-holding, you require blessing through policy, through facilitations, through some care, especially in an adverse situation. So that is what really needed. So both the front, it's an individual front, and this micro and small front, government has to really focus.
Mm-hmm.
जी लालिमा जी के इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मेरा एक प्रश्न है कि राजनीतिक कारण तो होते ही हैं, लेकिन क्या भारत जो एक आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रहा है और बन भी गया है, तो जैसे कि पाकिस्तान जैसे देश जो कि हम देखते हैं कि वो कैसे उनके सुर में बदलाव होता है, चाइना के सुर में बदलाव देखते हैं, ईरान को देखते हैं, मालदीव को देखते हैं, हम यूक्रेन को देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं आप आइए वहां पे समिट में आइए जो स्विट्जरलैंड में हो रहा है, तो कहीं न कहीं से इसका प्रमुख कारण जो है, अन्य कारणों के अलावा, भारत जो एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर है, ये भी एक प्रमुख कारण है। देखते हैं इसको आप।
हम लोग इसी एक स्टेटमेंट को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, शक्ति सर्वत्र पूज्यन्ते।
जी,
डोंट रिक्वायर टू थिंक एनीथिंग, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। इसी को एक दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदा बता तेरी रजा क्या है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप व्हाइट हाउस भी आपको बुला के स्वागत करेगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे करेगा। कोई भी महाशक्ति जो होता है वो दूसरे शक्ति को सम्मान देता है, लेकिन शक्ति बनने की जरूरत है।
जी,
वेल सेड, वेल सेड।
जाहिर तौर पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान ने, मालदीप ने, ये सब ने महसूस किया है कि अगर भारत के साथ अच्छा संबंध नहीं रहेगा तो उनके व्यापार पे सीधा असर पड़ेगा और उनको बहुत नुकसान होगा।
एक वो भी देखते हैं, वो लोग तुलनात्मक तरीके से देखते हैं कि अगर भारत बढ़ता है तो भारत किसी का अहित नहीं चाहता,
नहीं करता है।
तो इससे क्या फायदा होगा कि इसके बढ़ने से उनको लगता है कि उनकी भी आवाज बड़े मंच पर रखी जाएगी। तो भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, अब जानते हैं ग्लोबल साउथ की बात हो रही है।
जी, जी।
अब भारत सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा है, तो ये जो ग्लोबल साउथ का जो माउथ पीस है, जब भारत को बनना है तो ये विश्वास दिलाना होगा कि भारत सबके लिए काम करना चाहता है। हमारा जो वसुधैव कुटुम्बकम का जो है वो चरितार्थ करना चाह रहा है, तभी हम वास्तव में हम लीडर नहीं बनना चाह रहे, हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं। और गुरु अपने साथ सबको खड़ा रखता है, अपने साथ लेके चलता है। यहीं पे हमारे दूसरे एशिया का जो सबसे शक्तिशाली देश है, उनके साथ अगर तुलना करते हैं तो छोटे छोटे देश अब भारत को अपने हित में अपने पास पाते हैं। इसलिए भारत का महत्व इस दृष्टिकोण से भी बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल,
लाइक वी टुक, वी एक्सेप्टेड अफ्रीकन यूनियन इन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द G20 समिट। आई मीन यूजुअली दैट डिसीजन वुड हैव बीन टेकन ऑन द सेकंड डे, बट वी टुक इट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। सो दीज आर साइंस, एंड ऑफ कोर्स वी आर नाउ ट्रेडिंग इन द इंडियन रूपी विद मेनी कंट्रीज। ऑल दीज आर साइंस ऑफ द ग्रोइंग, एज यू सेड, शक्ति ऑफ द कंट्री।
Mm-hmm. And in the economic term, if we have to really make our, you know, stand stable, our currency has to be there in global forum. If our currency will not be there in global forum, we will not be able to be stable in global trade, international trade in long run. So we have to create that.
Vibhuti talked about the rupee. Rupee is weakening. A weakening rupee versus a stable rupee. What's your take?
See, right now, even what
kind of,
this kind of movement is not too much now. It's basically, even if it is, say, 1 rupee movement in a day, I don't consider it is going to be a big issue. Mm-hmm. See, both ways, it's both sides what is there. If your rupee is weakening one side, you can enjoy that, your import is going to be cheaper. If you are going to have a stronger one, your export is going to be there. And India ultimately had to, you know, remove this tag of import intensive economy to move into a balanced economy and in long run export in, you know, oriented economy. And I'll be really looking, once we will be into the move of export oriented, then we will look into our rupees should be, you know, more and more weakening component.
Right, right.
एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं। प्रमुख एशियाई सूचकांकों में आज मिला जुला रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.84%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.31% बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 1.33%, जापान का निक्केई 0.66% के नुकसान के साथ बंद हुआ, जबकि सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.05% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजार में प्रमुख सूचकांक अंतिम समाचार मिलने तक लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। लंदन के फुटसी में 0.61%, जर्मनी के डैक्स में 0.50% और फ्रांस के कैक में 0.31% की बढ़ोतरी हुई। दो सवाल मेरा, एक एशिया से और एक यूरोप में। जैसा कि उन्होंने चर्चा किया था, यूरोपियन यूनियन के चुनाव का क्या कहीं से कोई इफेक्ट है यूरोप में, पहला तो ये। दूसरा ये कि दक्षिण कोरिया का और उत्तर कोरिया का हम तनाव काफी ज्यादा देख रहे हैं इस बीच में, और खासकर अभी उसके बाद ही देखते हैं कि शेयर बाजार पे उनका कुछ असर वसर नहीं पड़ रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं?
देखिए, अगर यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन में अभी करीब करीब जितने भी प्रमुख देश हैं, मैं 27 की बात नहीं कर रहा, प्रमुख देश हैं वो सब अभी बुरी तरह से अपने इकोनॉमी के साथ माने त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो अपनी इकोनॉमी को खास करके चाहे वो जर्मनी की बात करें, हम स्पेन की बात करें, यूके की बात करें, सब परेशान हैं, और फ्रांस की बात कर लें, तो इन लोगों को अपने यहां डिमांड क्रिएट करने की जरूरत है और अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने की जरूरत है। अब देखिए यहां जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन दो तरह से इफेक्ट डालता है, एक तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका भी इफेक्ट इलेक्शन पे होगा और इलेक्शन का रिजल्ट फिर इकोनॉमिक कंडीशन पे डालेगा, तो ये एक लूप में चला जाता है। आप इस लूप से बाहर निकलने की जरूरत है, तो यूरोपियन यूनियन को बहुत संभल के आगे बढ़ने की जरूरत है अभी, और उनको ध्यान रखना है कि कैसे अपनी इकोनॉमी को अच्छा करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया से तो ऐसे भी हमारा अभी इकोनॉमिक ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं है,
उनकी बात कर रहा हूं।
हाँ, उनकी बात पे आप अगर कह रहे हैं तो वो बॉर्डर टेंशन कोई नया नहीं है।
हाँ, नया तो नहीं है।
नया नहीं है, बीच में कुछ साल पहले उन लोगों ने कोशिश किया था अपने बाउंड्री को क्रॉस करने की, वो एक फीट हाइट की बाउंड्री है, एक फीट हाइट की बाउंड्री को क्रॉस करने का वो था। देखिए जब तक साउथ कोरिया अपनी इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का जो माइंड सेट है, ऐसे अपने कुछ पड़ोसी देशों का माइंडसेट होता है, वैसा ही है, तो वो वाला जो चैलेंज है वो आप अभी बहुत उम्मीद उनसे नहीं लगा सकते हैं कि वहां शांति आएगा।
जी जी।
और उनकी जो स्थिति है वो स्थिति इसी बात पर निर्भर करती है कि जब तक वहां इकोनॉमिक ओपननेस नहीं आएगा तब तक वो शांति वहां बहाल नहीं हो सकती।
Right, let's move on to the US markets. We've talked a lot about the EU, now let's move on to the US markets and take a look at what's happening there. Well, 2 out of 3 US indices ended in green yesterday. Nasdaq added 0.88%, S&P 500 gained 0.27%, while Dow Jones Industrial Average slipped 0.31%. Has US come to terms with the fact that inflation, whatever, it was not used to inflation, and now post-COVID there has been inflation. Now it's kind of stabilized and reconciled to it.
It has been, if you look into their peak, from peak it has been very fantastically it has been stabilized, but not for their own term. See, we are Indian and we have always seen high inflation. So for us 3.6% is not a high inflation, but for USA still it is a high inflation, and that's why they are very, you know, withholding the rate cut decision, as well as they are little perturbed because of this high inflation in their term. But undoubtedly the demand is in place and now they are more in a bullish mode, they are moving ahead, and I am sure they will able to do it in the near future.
All right. A look at oil prices now. Brent and WTI crude trading in green in the global crude market today. Brent crude gained 1.09% to $82.81 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI also increased by 1.21% to $78.84 per barrel when reports last came in.
और सोना चांदी का हाल जानते हैं। कमोडिटी बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला रुख रहा। 5 अगस्त 2024 अनुबंध के लिए सोना अंतिम समाचार मिलने तक 0.07% की मामूली गिरावट के साथ 71,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर 5 जुलाई 2024 अनुबंध वाली चांदी 0.36% बढ़त के साथ 88,980 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में अंतिम समाचार मिलने तक दिन के कारोबार में सोना कॉमेक्स पर 0.11% की तेजी के साथ $2,329.20 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 0.78% की तेजी के साथ $29.46 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। हाल के दिनों में जिस तरह सोने की कीमतें बढ़ी है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या घर में पत्नियों के लिए सोना खरीद कर रखें या कहीं और उसको ये करें, निवेश करें?
सोना ऑलवेज एक सबसे सेफेस्ट और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली इंडियन हाउसहोल्ड में।
जी।
और ये ऑल टाइम है, इट इज रियली वेरी गुड।
ऑन अ पॉजिटिव नोट, थैंक यू कुमार बिजॉय जी फॉर कमिंग टू आकाशवाणी स्टूडियोज। And before we wind up, friends, here's a reminder of the headlines. Domestic equity benchmark indices end in green. Sensex closes at 76,607. Nifty settles at 23,323. India to remain world's fastest growing economy with steady growth rate of 6.7% over the next three fiscal years, says the World Bank. And Brent crude trading at $82.81 per barrel in global crude market. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor
Vibhuti Mishra. आपको नमस्कार कर रहे हैं.